ॐ ज्ञानचरिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साधुजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा रविता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कृते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसृते देवी प्रणमामि जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरशिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव दिन निमित्त हम आदि लीला अध्याय दूसरा में चैतन्य महाप्रभु के परम तत्व होने का प्रमाण के साथ कुछ चर्चा का विषय बना रहे हैं। श्री प्रभुपाद ने आदि लीला का प्रथम भाग ये तत्व की स्थापना करने के लिए संपूर्ण रूप से अपनी सारी विद्वत्ता उसमें डाल दी है। चैतन्य महाप्रभु को हम भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न समझते हैं, लेकिन उनको पुरवार करना और जन सामान्य के बीच में इनको भगवान मानने का प्रस्ताव रखना काफी हिम्मत की बात है। ज्यादातर उत्तर भारत में और जहां तक इतिहास का संबंध है, 500 साल पहले भक्ति के उदय की जो समय गणना की जाती है, उस समय चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे ऐसे महात्माओं भी पैदा हुए थे अन्य अन्य जगह जो समकालीन कहलाते हैं और भक्ति के विषय में ही यत्किंचित इन्होंने योगदान दिया। फिर भी इसमें विशिष्ट रूप से चैतन्य महाप्रभु ही क्यों भगवान कहना, भगवान होने का दावा करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। श्री प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में अपने तात्पर्य में भी पूरे पूरा प्रयत्न किया है कि जिसके द्वारा हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की भगवत्ता कैसे प्रामाणिक हो सकती है उसके लिए आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है और साथ साथ में हमें पाठकों को या अभ्यास करने वालों को कह रहे हैं कि हरे कृष्णा का जो आंदोलन है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ मत में इसका जो योगदान है, तो उसके लिए ये युग धर्म होने के कारण अति आवश्यक है कि हम पहले ये जान लें कि चैतन्य महाप्रभु भगवान क्यों। ये कोई भावना का विषय नहीं, भावना से तो हम चलो बहुत सारे समुदायों के या भक्तों के परिचय में आते ही हम स्वीकार करने लगते हैं, मान्यता धराते हैं, लेकिन मान्यता के पीछे जो कोई प्रमाण नहीं होता तो मान्यता भी हवा में लटक जाती है और वो बदलती रहती है। इसीलिए उत्तर भारत में ज्यादातर चैतन्य महाप्रभु को भगवान मानने वाले कितने, सारे भारत में देखो तो उनको एक भक्त के रूप में ही मानते हैं, भगवान के रूप में स्वीकार करना ये बड़ी मुश्किल की बात है। और इसका जो उत्तरदायित्व भगवान स्वीकार करने का, तो उनकी परंपरा में चले आने वाले के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब चैतन्य चैतामृत का आप श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये सारी आदि लीला का ये प्रथम भाग जो प्रभुपाद जी ने पहले अंग्रेजी में अनुवाद किया है, सिर्फ इस तत्व के पीछे ही न्योछावर किया है, इस तत्व को स्थापना करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु के जन्म आदि की जो सारी बातें बाद में बताई गई, भगवान का प्रकट होने का आंतरिक कारण बताते हैं, ये करते हैं, लेकिन ये भी कोई पूर्वयोजित यानी कि योजना के अनुसार अभी हमारे बीच में यानी कि कलयुग में भक्ति सिखाने के बहाने अपनी मूल लीला प्रकट करते हैं जो कृष्ण भगवान की 5000 साल पहले की लीला से अभिन्न बताई जाए। तो इन सारी चीजों को सुसंगठित रूप से उसे प्रस्तुत करना ये कोई मामूली बात है। इसीलिए वो शुरुआत करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर के आर पार तैर सकता है और विभिन्न सिद्धांत रूपी मगनों से भरा हो। ये जो सैद्धांतिक सत्य रूपी सागर श्री प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है जो भयावह जर्जरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा। विविध दार्शनिक सिद्धांत यानी कि सबकी मति तुंडे तुंडे मतिर्भिन्न, हर एक खोपड़ी में अलग विचार, कोई एक दूसरे के साथ सहमत होना इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है, सबके विचार अलग अलग है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि और गौतम का योग तथा कणाद कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में घातक जीवों के तुल्य है। भयानक मगरमच्छ जैसे हैं जो सामान्य आदमी को जो तैरना नहीं जानता है उनको तो खा ही जाए, यानी कि ऐसे सिद्धांतों में पड़े रहने वाले ज्यादा सफल नहीं होंगे। वो संसार रूपी ये सागर को पार करने के लिए सक्षम नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करके ज्ञान के सागर की असली जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ये तो दावा है या सिद्ध हकीकत है या सिर्फ झूठा कोई आश्वासन दिला रहा है अपना मत खाकरने के लिए या अपना कोई अलग सा संप्रदाय बनाने के लिए? नहीं, बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए हम सबों को श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी चाहिए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि कृष्णात कीर्तन गान नर्तन कलापात जनी ब्राजिता सदा भक्ता अवली हंस चक्र मधुपक्षेणी विहासपदम करणानंदी कल ध्वनि निर्वहतु मे जिह्वा मनु प्रांगणे श्री चैतन्य दयानिधे तव लसत लीला सुधा स्वधुर्णी। हे मेरे दयालु चैतन्य, आपके दिव्य कार्यों का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीव की तरह की सतह पर बहता रहे। इस जल को सुशोभित करने वाले हैं वो गाते हैं नाचते हैं तथा कृष्ण का नाम उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए वे कमल के फूल को जो अन्य भक्तों को आनंद के धाम है, ये भक्त हंसों चकलों तथा भंवरों से तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि हमारी जीभें व्यर्थ ध्वनि करने में सदाए लगती रहती है जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह की सहायता नहीं करती। जीभ की तुलना मरुस्थल से की गई है क्योंकि मरुस्थल को उपजाऊ तथा फलयुक्त बनाने के लिए निरंतर तरोताजा करने वाले जल शुष्क दर्शन कविता आदि सांसारिक विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है क्योंकि इन विषयों की विशेषता इनका दिव्य आनंद है किंतु ये भौतिक गुणों से संतुष्ट रहते इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वे मरुस्थल तुल्य जीव की प्रस्तुत आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते हैं। अतएव विभिन्न सम्मेलन में चिल्लाने रहने पर भी मनुस्थल तुल्य जीव सुखी रह जाती। इसी कारण से विश्व भर के लोगों को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं जिनकी तुलना उन हंसों से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को चारे ओर तैरते रहते हैं या उनके चरण कमलों को इर्द गिर्द मधुमक्खियों की तरह मधु की तलाश में गुंजार करते रहते हैं। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा आर्द्र नहीं हो सकती जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसी काल्पनिक वस्तु से रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके प्रामाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है। जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते अपितु उन मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं जो मधु से सिक्त कमल के फूल को भी कभी छोड़ती है। ऐसे तथाकथित भगवान और चैतन्य महाप्रभु का अवतार मानने वाले बहुत घूम रहे हैं। सावधान रहना, ये लक्ष्य है कि चैतन्य भगवान के भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, नहीं कि अपने को चैतन्य महाप्रभु का अवतार बनाओ। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नाच और गाने से पूर्ण है। यहाँ पर इसकी तुलना गंगा के शुद्ध जल से की गई है जो कमल के फूलों से भरा हुआ रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त है जो भौरों और हंसों के समान है। वे स्वर्ग धाम की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि ऐसी मधुर उठती तरंगे उसके जीव को सिक्त कर दे। वह विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकवादी व्यक्तियों से करता है जो शुष्क बातों में लगते रहते हैं जिनसे कोई तुष्टि नहीं मिल पाती। यदि ये अपनी शुष्क जीवों को भगवान नाम के कीर्तन में हरे कृष्णा मधुर अमृत प्राप्त हो जाए और वे जीवन को भोग सके। तो ये पूर्व भूमिका बताते हैं। लेकिन प्रचार के माध्यम में हम देखें तो प्रचार में खास करके वर्णन तो आना चाहिए। वर्णन करते समय हम तत्कालीन जो हमारी इंद्रियों से जानने वाली जो सारी बातें हैं या हम पर जो अपने मानसिक प्रभाव या अपने अभ्यास क्रम में जो प्रभाव डालने वाली बातें हैं जो गहराई से हमें भौतिकता में डुबोए देती है, तो इन चीजों से चैतन्य महाप्रभु की बात और या आत्मा की आवश्यकता की बात को कोई लेना देना तो है ही नहीं। तो उसके लिए हमें यह सिद्धांत का बहुत आवश्यकता पूर्वक अभ्यास करना है। ऐसा मत प्रभुपाद जी बताते हैं, जिनका वर्णन उपनिषद निर्विशेष ब्रह्म के रूप में करती है वह मात्र उनके शरीर का तेज है, जो परमात्मा रूप भगवान उनका अंतर्यामी अंश है। वे छह ऐश्वर्य से पूर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, वे परम सत्य है और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है न उनके समान है। ये श्रीमद् भागवत की बात है। कैसे वस्तु को सर्वप्रथम प्रकट करती है, वस्तु यानी विषय, बाद में उसके लक्षण दिखे जाते हैं। सर्वप्रथम वस्तु प्रकट करनी होती है, वस्तु यदि प्रकट है तो उनके विषयों की चर्चा हो सकती है या उसके बारे में उसके लक्षणों की चर्चा हो सकती है। जबकि हमारे पास कुछ है ही नहीं, इस विषय को पहले यानी कि उसकी चर्चा के विषय को या उसके लक्षणों को पहले हम खड़े कर देते हैं और बाद में वो वस्तु ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, वो बिल्कुल अवैज्ञानिक ढंग है। जैसे आजकल का विज्ञान क्या करता है, जीवन क्या है उसकी खोज निकालने के लिए जीवन के बारे में जो कुछ समझते हैं वो वस्तु उनके हाथ में तो है ही नहीं, लेकिन कहते हैं कि हम लेबोरेटरी में खोज निकालेंगे, झूठा दावा करते हैं और कुछ आज तक करके बताते हैं। जीवन है वो सत्य है, उसको सर्वप्रथम स्वीकारना होता है। जीवन कहां से आता है वो सर्वप्रथम भगवान स्वयं कह देते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समर्पिता। बुधा बुधा भाव यानी कि अकलमंद, जो लोग अकलमंद है ही नहीं वास्तव में बड़ी अकल वाले का दावा करते हैं उसका दावा हमेशा झूठा साबित होता है, तो उन पर भरोसा मत करें। विज्ञान जो है सर्वप्रथम वो वस्तु को स्वीकारता है, बाद में उसके लक्षणों को नापता है और तोड़ता है। चलो एक उदाहरण दे, भगवान कौन है? लोग तो भगवान को मानते हैं लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को भी भगवान के रूप में पूजा करने लगते हैं, वो स्वीकार करते हैं लेकिन उनके लक्षण बता नहीं पाते कि भगवान के भगवत्ता का है। जो लक्षण बताने में कमजोर है तो भगवान की प्रामाणिकता सत्य साबित हो ही नहीं सकती। यहां तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान पूर्वार करना है, तो भगवान श्री कृष्ण है वो श्रीमद् भागवत में हमें मिलता है, उनको स्वीकार करके चैतन्य महाप्रभु वही भगवान है वो सिद्ध करना। श्रीमद् भागवत में भगवान के विषय की चर्चा की गई, निर्गुण ब्रह्म, स्थान रूपी परमात्मा और व्यक्ति विशेष भगवान, ये तीनों की चर्चा और उसके लक्षण क्या है, कैसे इनको समझाया जाता है, किस ढंग से समझना चाहिए, जो वैज्ञानिक रूप से हम उसकी अनुभूति कर सके, उसकी प्रस्तावना में काफी जोर लगा है। चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति या सामान्य जीव नहीं, जो जिन्होंने सिर्फ सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन धारण किया। 500 साल पहले भगवान का अवतरित होना और उसके पीछे की लीलाओं का श्रवण करने में सहज आनंद तो है, पर लेकिन ये लीलाओं के पीछे रहस्य क्या है? रहस्य समझने के लिए सिद्धांत समझना बहुत आवश्यक है। और ये सिद्धांत जो सिद्धियों का अंत है, तो वो कैसे हवा में लटकता मिल जाएगा? उसकी स्थापना होती है, स्थापना करना और उसके उसको समझाना, उसको अंतःकरण से अनुभूति करना, इसके पीछे तो लोग सारी जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अबोध बालक भी भगवत तत्व समझ सकता है और चैतन्य महाप्रभु के कहे पर विश्वास रख सकता है। ऐसी कृपा जो कृष्ण भगवान ने नहीं की। अर्जुन को समझाते हुए कम से कम 1.5 घंटा लग गया, तब उसकी अकल ठिकाने आई। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से सामान्य आदमी सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करके ये कृपा प्राप्त कर लेता है। ये कोई झूठा आश्वासन नहीं, क्योंकि सिद्धांत इतना मजबूत है। सिद्धांत जब मजबूत है तो वो उस पर आप बुनियाद बना सको। ऐसी बुनियाद जो अनुभूति की बुनियाद है, वो चैतन्य चरितामृत का कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं, जो ये प्रामाणिक शास्त्र स्वीकार करके श्रील प्रभुपाद ने उसे स्नातकोत्तर शास्त्र। तो अवश्य हर एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के सदस्य को इसका ठीक ढंग से अभ्यास करना चाहिए, जो प्रचार के माध्यम में बहुत आवश्यक होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि उपनिषदों के संकलन करता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। उपनिषद एक जो वैदिक वांग्मय की अत्यंत उदात्त अंग मानी जाती है, उन व्यक्तियों के लिए है जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं। उपनिषद में ज्यादातर अव्यक्त ब्रह्म की सराहना की गई है। अव्यक्त ब्रह्म, निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म, जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भी जाने जाते, तो उपनिषद के अभ्यासियों को सिर्फ मुक्ति की परवाह और कोई चीज नहीं। और इसीलिए प्रकाश प्राप्त करने के लिए, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग उपसर्ग का उप सूचित करता है कि परम सत्य विषय ज्ञान गुरु से प्राप्त किया जाए, जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है वह वास्तव में दिव्य शिक्षाएं प्राप्त कर सकता है। दिव्य ज्ञान दिव्यता की शुरुआत ब्रह्म ज्योति से, वो तो शुरुआत है। ज्ञान ब्रह्म ज्योति ये तो साधक के लिए शुरू की अनुभूति, अंतिम अनुभूति नहीं बताई है। जो जो भौतिक जीवन के प्रति आसक्ति शिथिल पड़ जाती है क्यों क्यों वह आध्यात्मिक पक्ष पर अग्रसर हो सकता है। उपनिषदों के दिव्य विज्ञान का ज्ञान मनुष्य को भवपाश से मुक्त कर सकता है और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ भगवत धाम को प्राप्त होता है। यानी कि धाम विशेष सूचना ये देता है कि कोई स्थल है, स्थानिक अवस्था है कुछ है। लेकिन भगवान का जो स्थल है यद्यत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं, वो न निवर्तन्ते वाली बात जो है उसके बीच में कोई एक और व्यवस्था होनी चाहिए जो स्थान भी इंगित कर दर्शाए और ज्ञान का प्रकाश भी दर्शाए। तो वो परब्रह्म के अनुभूति के लिए धीरे धीरे लायक बन जाएगा। तो वो स्थान परमात्मा का सूचन करता है। ब्रह्म ज्योति प्राथमिक अवस्था बताई, परमात्मा का दर्शन करना व्यक्तित्व की झांकी कराता है, लेकिन न तो संबंध, न तो कोई संबंध टिकाने के लिए प्रयोग, न तो संबंध के पीछे जो लक्ष्य है उसकी अनुभूति करा सकते। वो तो सब बाकी का बाकी रहता है। तो ये भगवान के लिए सर्वप्रथम जो परम सत्य की प्रस्तुति करना, क्योंकि ये सत्य, ये परम सत्य कहलाता है, तो ये विषय पहले सिद्ध, क्योंकि परम सत्य हमेशा होता, वो नहीं है करके उसे ढूंढने का प्रयत्न मत कर। नहीं है इसलिए मैं ढूंढता हूं, वो गलत बात है। जब है तो उसके लक्षण क्या है, इसीलिए ये सारी समझौती पहले देते हैं। ज्ञान का प्रकाश, परमात्मा का स्थान और भगवान का विशुद्ध स्वरूप, चरित्रमय स्वरूप, ये तीनों की कक्षा परम सत्य को लगती है। यानी कि परम सत्य की स्थापना करने के लिए हमें इनका अभ्यास करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का ये उद्धरण करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वदन्ति तत्व विदस् तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तो भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी है, क्योंकि वे साक्षात कृष्ण हैं, वे पूर्ण कहलाते हैं और चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी भी है। जिस तरह श्री राम आदर्श राजा है, उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने जीवन में अतीव अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतः वर्जित है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी, अन्य लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते। वे यथासंभव उनके चरण चिन्हों का अनुसरण ही कर सकते। जो लोग इस आश्रम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण न करें, किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण है, अतएव वे परम सत्य के सर्वोच्च तत्व है। चैतन्य महाप्रभु विषय सच्चाई का विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, न तो उनसे बढ़कर है, न तो तुल्य। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है,
इस तरह उसकी पुष्टि होती है कि श्री कृष्ण चैतन्य को से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का लक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुसरण करते रहते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं, किंतु जो भगवान को जानता है वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से बढ़कर होता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान का चरम पद है। भगवान सच्चिदानंद पूर्ण प्राण ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण स्वरूप है। पूर्ण के अंश सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति होती है। पूर्ण के चित अंश से भगवान के अंतर्यामी रूप परमात्मा की अनुभूति होती है, लेकिन पूर्ण के इन किसी भी एक की आंशिक अनुभूति आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं बनती। आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अपूर्ण रहता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखित इस श्लोक की पुष्टि से उसी के समान कथन से होती है जो श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ में मिलता है। तत्व संबद्ध के 8वें खंड में भी कहा गया है कि कभी कभी निर्विशेष ब्रह्म के रूप में परम सत्य तक पहुंचा जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक स्वरूप होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को कृष्ण का ही अंश समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है जो सारे जीवों के दिव्य प्रेम के लक्ष्य है।
इसी तरह भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण सर्वव्यापी विष्णु तत्व है। वे पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद है। वे परम ब्रह्म है। नंद सुत बलियारे भागवते गाय से ही कृष्ण अवतीर्ण श्री चैतन्य गोसाई, जिसे श्रीमद भागवत नंद महाराज के पुत्र के रूप में बतलाते हैं, वही भगवान चैतन्य के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अपने विभिन्न स्वरूपों की दृष्टि से वे तीन स्वरूपों में विख्यात हैं, जो निर्विशेष ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा तथा आदि भगवान कहता है। वो चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है, और उसमें भगवान शब्द का विश्लेषण करते भ ग और व ये तीन अक्षरों का विश्लेषण करते कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये षड ऐश्वर्यों की सारी माहिती बता देते हैं। चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तित्व में इन तीनों चीज का परिचय कराने के लिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी काफी लिखते हैं, जो मुंडक उपनिषद इत्यादि ब्रह्म साहित्य इत्यादि सारे संदर्भों के साथ बताते हैं। सही कोई इंद भजियामी त्या मोर पति ताहार प्रसादे मोह है सृष्टि शक्ति, मैं ब्रह्म गोविंद की पूजा करता हूँ, वे मेरे ही प्रभु हैं, केवल उन्हीं की कृपा से मुझमें ब्रह्मांड का सृजन करने की शक्ति हुई है। वो ब्रह्मा जी की भी ये सारी स्वीकृति है। वो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक बताते हुए बताते हैं कि मुनयो वात वासना श्रमणा उदर्ध्व मंथिनः ब्रह्माख्यम धामं ते यान्ति शांतः सन्यासिनो अमला। वे नग्न साधु तथा सन्यासी जो कठिन शारीरिक तपस्या करते हैं, जो अपने वीर्य को मस्तिष्क तक उठा सकते हैं, ऊर्ध्व रहता है, जो ब्रह्म में पूर्णतया स्थित है, वे ब्रह्मलोक नामक मंडल में निवास कर सकते हैं। ये साधुओं की बात, जो ब्रह्म की उपासना करने के लिए कितनी कठिन तपश्चर्या करते हैं, तो ऐसे साधु सन्यासी तपस्या के अभ्यास से ऐसी शांत दशा को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के गुणों से परे हैं और वे निर्विशेष ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखो तो योगियों को भी कितनी कठिनाइयां होती है, और वो भी सिर्फ परमात्मा का दर्शन के लिए ही अपने हृदय में ध्यान लगाते बैठे। योग की साधना का विषय तो सत्ययुग का विषय था, कृते ध्याय तो विष्णु। तो ये योगी लोग भी जब परम सत्य का परिचय करने के लिए, और वो भी आंशिक, और वो भी जब परमात्मा का ही दर्शन करते हैं, तो जैसे कठोपनिषद में भी कहा है कि एक वृक्ष की डाल पर दो पंछी जो रूप रंग में समान है, वो योगी दूसरे पंछी को देखने का प्रयत्न करता है, लेकिन जब तक उसके मुख में फर है तहां तक वो विह्वल है, बंधन में है, इसलिए वो देख ही नहीं सकता। जब वो भौतिक कलमशों से छूटने का प्रयत्न नहीं करता, यानी कि फल त्याग नहीं करता, वास्तव में संन्यास नहीं करता, सबके लिए न्यास करना, परम सत्य का अनुभव करने के लिए ही तो ये सब अनुष्ठान कर रहा है, तब तक उसको यानी कि अपना फल मुख से छोड़ने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, तब तक वो साथ में बगल में जो पंछी बैठा है परमात्मा उसका दर्शन करने में समर्थ। और जब ये अनुभव करता है, चलो दर्शन कर लिए, तो वो समझ रहा है कि ये परमात्मा का पंछी सिर्फ उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में ही दिखाई देता है। उपद्रष्टा यानी साक्षी, अनुमंता यानी कि वो हमें छूट देता है करने की। तो वहां प्रभुपाद जी बताते हैं इसका मतलब ये हुआ, भगवान का मूल स्वरूप जो है, जो सभी जीवों का बीज है, बीजम सर्वभूताना या ताशाम महद्योनि अहम बीज प्रदपिता, ये कहने वाले कृष्ण भगवान मूल रूप, उसकी तो बात ही परमात्मा की लेवल में नहीं हो सकती। तो परमात्मा सिर्फ स्थिति, उनका परिचय चतुर्भुज विष्णु के रूप में, यानी क्षीरोदकशायी विष्णु का विस्तार बताते हैं, लेकिन वो स्थायी स्थिरता, ये परमात्मा सिर्फ उपद्रष्टा है और अनुमंता, ये अनुमंता भी स्वयं कुछ नहीं करते। परमात्मा हरेक जीवों की इच्छा पूर्ण नहीं करते, लेकिन भौतिक प्रकृति के द्वारा हरेक जीवों की इच्छा पूर्ण करने का सौंपते, भौतिक प्रकृति को सौंपते, खुद नहीं करते। ये परमात्मा खुद अपनी इच्छा पूर्ण नहीं करते, वो तो स्थायी देखते रहते हैं, विटनेस हो रहे हैं, चाहे वो चेतावनी दे सकते हैं, देख तू करता है तेरी जिम्मेदारी, मेरा कुछ लेना देना नहीं, न कश्चित चित पापम, मैं किसी का पाप नहीं लेता, न पुण्य लेता हूं, तो जो परमात्मा सिर्फ योगियों के हृदय में भी जो अनुभूति करता है तो उनके हृदय में भी सिर्फ स्थान धरा है, तो इनके साथ व्यवहार कैसे कर सकता है, कर ही नहीं सकता। योगियों सिर्फ शांत भाव से उनको निहारते रहते हैं, ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति हम योगी ना। तो ये तो परमात्मा का लक्षण, उस पर पूर्ण अनुभूति कैसे हो सकती है परम शक्ति। तो ये सिद्धांत बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ये परमात्मा इनका विस्तार, चेतन महापुरुष तो पूर्ण व्यक्तित्व है जो कृष्ण भगवान से अभिन्न है। कृष्ण भगवान तो वैसे उनका पूर्ण रूप देखने जाए तो जब तक वो अपनी अंतरंग शक्ति राधा रानी को प्रकट नहीं करते तब तक पता भी नहीं चलता कि ये कौन है। इनकी लीलाएं बिना राधा रानी को हो ही नहीं सकती, राधा रानी को विस्तार करना पड़ता, अंतरंग शक्ति है, अविभाज्य शक्ति है, इनको अलग भी नहीं की जा सकती, फिर भी अचिंत्य लीलाएं प्रकट करते हैं। तो हम इस तरह ये तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण देखते हैं, ये परमात्मा के लिए ये कहा गया कि जिस तरह एक सूर्य असंख्य रत्नों में प्रतिबिंबित होता है उसी प्रकार गोविंद यानी कि परमात्मा रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रकट होते हैं। तो वो परमात्मा अपनी इच्छा पूर्ण नहीं करते, इच्छा तो भगवान स्वयं को ही पूर्ण करनी पड़ती है क्योंकि वो नित्य है। नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति का है। हम नित्य है लेकिन हम सभी नित्यों से भी नित्य जो है वो एक ही मात्र सभी की इच्छा पूर्ण। तो एक व्यक्तित्व पर जाना वो चेतन महाप्रभु का व्यक्तित्व पर इनको लाना, ये सिद्धांत का स्पष्टीकरण कहलाता है। ऐसे तो बहुत सारी विभूतियां भौतिक अवस्था में भी भगवान की प्रकट होती है, लेकिन भगवान ने अर्जुन को ये क्यों कहा कि अथवा बहुना किं ज्ञानेन तव अर्जुन विष्टव्यामहं कृष्णेन एकांश जगतो स्थितः। भगवान कृष्ण ने कहा अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूं, मैं केवल अपने एक अंश द्वारा ही सारे विराट जगत में व्याप्त रहता हूं। देखो विष्णु पितामह भी श्रीमद्भागवत में कुछ ऐसा ही कुछ कहते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि एक ही व्यक्तित्व का सारा विस्तार को जानना। विष्णु पितामह कहते हैं कि तम इमम अहम अजम शरीर भाजाम रदि रदि दृष्ट आत्मक कल्पिताना प्रतिदशमीव नैकाद आत्मेकम समधितो गस्मि विद्युत भेद मोह। विष्णु पितामह ने कहा जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रतीत होता है उसी तरह हे अजन्मा कृष्ण भगवान क्योंकि ये मृत्यु के शैया पर जब विराजमान थे शैया पर लेटे हुए थे, शरीर छोड़ना उनके हाथ में था लेकिन छोड़ते पहले ये अनुभूति कराए जाते हैं कृष्ण भगवान साक्षात सामने है, इनको वो कैसे स्वीकारते हैं। देखो वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य विभिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न प्रसिद्ध होता है उसी तरह हे अजन्मा आप हर जीव में परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप के सेवक के रूप में जन्म लेता है तो उसमें ऐसा द्वेष नहीं रहता। इस प्रकार अब मैं आपके शाश्वत रूपों को समझने में समर्थ हूं और भली भांति जानता हूं कि परमात्मा आपका अंश मात्र, ये भीष्म पितामह कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य अनेक व्यक्तियों को लिए देखने की वस्तु है, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण का एक अंश जो हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में रहता है, विविध प्रकार से दिखलाई पड़ने वाली वस्तु है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की नित्य सेवा में अपने आप को लगाकर उनके निकट संपर्क में आता है, वह परमात्मा को भगवान के अंतर्यामी अंश के रूप में देखता है। विष्णुदेव जानते थे कि परमात्मा उन भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप है, जिन्हें वह परम अजन्मा दिव्य रूप में समझ चुके थे। अभी ये अंतिम प्रहार करना, जिसके द्वारा सारी सिद्धियों का अंत आता है, ये सिद्धांत का प्रमाण शास्त्र प्रमाण देते हुए कहते हैं कि सही गोविंद साक्षात चैतन्य गोसाई जीवन स्थायित है छे दयालु आर नाई। वही गोविंद स्वयं चैतन्य गोसाई के रूप में प्रकट होते हैं, अन्य कोई प्रभु पतित आत्माओं का उद्धार करने में इतना दयालु नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, ब्रह्म तथा परमात्मा स्वरूपों में गोविंद का दर्शन वर्णन कर चुकने के बाद श्री चैतन्य चैतामृत का प्रणेता यह सिद्ध करने के लिए तर्क पेश करता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वही व्यक्ति है, वही कृष्ण कृष्ण भक्त के वेश में उन पतित मानों का उद्धार करने के लिए इस मर्त्य रूप में अवतरित हुए हैं, जो भगवद गीता की व्याख्या करने के बाद भी भगवान को नहीं समझ पाए। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने प्रत्यक्ष रीति से उपदेश दिया कि परमेश्वर व्यक्ति है, निर्विशेष ब्रह्म उनका चमकीला तेज है, परमात्मा उनका अंश रूप है, और सारे मनुष्य से सलाह दी गई कि सारे संसारी वादों को त्याग करके वे कृष्ण के मार्ग का अनुसरण करें, अपितु अपराधियों ने इस उपदेश को ठीक से नहीं समझा क्योंकि उनमें ज्ञान की कमी थी। अतएव अपनी अभित की कृपा से श्री कृष्ण की श्री चैतन्य गोसाई के रूप में पुनः प्रस्तुति करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत का लेखक बल देता है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है, वे कृष्ण के प्रकाश तथा विलास रूपों के अंश नहीं है, वे स्वयं रूप गोविंद है। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने जो संगत शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं, उनके अतिरिक्त भी असंख्य कथन जिनके अनुसार चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। यहां पर निम्नलिखित कथन उद्धृत किए जा सकते हैं। प्रथम, चैतन्य उपनिषद से, गौर सर्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी गुणातीत सर्व सत्व रूपो भक्ति लोके काश्यति। सर्वव्यापी परमात्मा भगवान गौर उन महान संत तथा शक्तिशाली योगी के रूप में प्रकट होते थे जो त्रिगुणातीत है और आध्यात्मिक कर्म का प्रतीक है, वे सारे विश्व में भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने वाले हैं। दूसरा है श्वेता सतर उपनिषद से, तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तम देवतानाम परम च दैवतम पतिनाम पतिम पतिनाम परमं परस्ताद विदाम देवम भुवनेश मिंडयन। हे परमेश्वर, आप परम महेश्वर समस्त देवताओं के आराध्य तथा समस्त प्रभु के प्रभु हैं, आप समस्त नियमाकों के नियामक, ईश्वर के प्रत्येक पूजक और वस्तु के स्वामी हैं। महान प्रभु पुरुष सर्वशेष प्रवर्तक सुनिर्मलाम इमं प्राप्तिम ईशानो ज्योतिर्व्यय। भगवान महाप्रभु है जो दिव्य प्रकाश को विस्तारित करता है, उनके संपर्क में आने वाले का अर्थ है अविनाशी ब्रह्म ज्योति के संपर्क में आना। यह भी श्वेतासुत्र उपनिषद के तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक है। मुंडक उपनिषद तीसरे अध्याय तीसरे स्कंद का पहला अध्याय और तीसरा श्लोक है कि यदा पश्य पश्यते रूपम वर्ण कर्तारम ईशम पुरुषम ब्रह्म योनिम, जो स्वर्णिम रंग वाले भगवान परमेश्वर परम कर्ता पर ब्रह्म के उद्गम का दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है। श्रीमद भागवत से भी ये ध्येयम सदा परिध्वनम अमिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिविर विरंची अनूत शरण्यम भृत्यातीह प्रणतपाल भवाप्तिकोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका सदैव ध्यान करना चाहिए। वे अपने भक्तों के अपमानों को नष्ट करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। वे समस्त तीर्थों के आगार तथा समस्त मुनियों के आश्रय हैं और शिव तथा ब्रह्मा द्वारा पूज्य हैं। वे जन्म तथा मृत्यु के सागर को पार करने के लिए देवताओं की नौका है। श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद 5वां अध्याय और 33वां श्लोक है। 34वां श्लोक भी कहता है कि त्यक्ता सुदुर्जित राज लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदारण्यम माया मृगम दैतयेप्सितं बन्धवात वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हम उन भगवान के चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं जिनका सदैव ध्यान करना चाहिए। उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया और अपनी नित्य सहचरी को त्याग दिया जिसकी प्रशंसा स्वर्ग के निवासी तक करते हैं। वे उन पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए जंगल में गए जो माया द्वारा मुंह में पड़े हुए। प्रहलाद कहते हैं इत्थम नृतीय रियुष देव भूषावतारई लोकान विभावयसी हंसी जगत प्रतिपान धर्म महापुरुषम पासी युगानुवृत्तम छन्न कलौ यद्भवत् स्त्रियुगो अथत् सत्वम्। ये भागवत के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय और 38वां श्लोक है कि हे प्रभु, आप मनुष्य पशुओं देवता ऋषियों जलचरों आदि के परिवारों में नाना अवतार लेकर संसार के सारे शत्रुओं का विनाश करते हैं। इस तरह आप संसार को अपने दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। हे महापुरुष, आप कलयुग में भी कभी कभी प्रचंड अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए आप त्रियुग केवल 3 युगों में प्रकट होने वाले कहलाते हैं। कृष्ण यामल से भी पुण्य क्षेत्रे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः, मैं नवद्वीप की पवित्र भूमि सचि देवी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। वायु पुराण से भी कलौ संकीर्तन आरंभे भविष्यामि सचिसुतः, कलयुग में जब संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ होगा तो मैं सचि देवी के पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। ब्रह्मयामल से अथवा हम धराधामे भूत्वा भक्त रूप रूप मायाम ये भविष्यामि कलौ संकीर्तन आगमे, कभी कभी मैं पृथ्वी पर भक्त के वेश में प्रकट होता हूँ। विशेषतया कलयुग में मैं संकीर्तन आंदोलन चालू करने के लिए शशि के पुत्र के रूप में प्रकट होता हूँ। अनंत संहिता में भी कहा कि यह एव भगवान कृष्णो राधिका प्राणवल्लभ सृष्ट्यादौ स जगन्नाथो गौर आसीन महेश्वरी। साक्षात भगवान कृष्ण जो श्री राधा रानी के प्राण हैं और ब्रह्मांड के सृजन पालन तथा संहार के स्वामी हैं, हे महेश्वरी वे ही गौर रूप में प्रकट होते हैं। ये कौन बोलते हैं? शिव जी। तो इस तरह भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण जो मूल आदि पुरुष हैं वही हैं करके सिद्ध करते हैं और उसके पश्चात आदि पुरुष कृष्ण की भी पुष्टि करने के लिए बहुत सारा संदर्भ देते हैं। तो वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व यारे कहे नाही यार सम, जिसे वेदों में, भागवत में, उपनिषदों में तथा अन्य दिव्य ग्रंथों में परम पूर्ण तत्व के रूप में बतलाया जाता है, वे ही भगवान है, कोई उनके तुल्य नहीं है। तो ऋक संहिता में तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि वा चक्षुरादनम, जो भगवान विष्णु परम सत्य हैं, जिनके चरण कमलों का दर्शन पाने के लिए सारे देवता लालायित रहते हैं, वे सूर्य की भांति अपनी शक्ति किरणों से भी हर वस्तु में व्याप्त हैं, वे अपूर्ण आंखों के निर्विशेष लगते हैं। नारायण अर्थात अथर्वशेष उपनिषद इसमें भी कहा है, नारायण उपनिषद में भी कहा है, अशिष्ट पंचरात्र में भी की है, भागवत से भी कहा है कि नारायणम अद्विधानस्य ब्रह्म परमात्मन निष्ठा महर्तो वक्तुम यूयम ही ब्रह्म वित्तम। ये सभी भगवान श्री कृष्ण की पुष्टि करने के लिए, उनको प्रामाणित करने के लिए रजू करते हैं, यानी कि गुरु साधु शास्त्र वाक्य चित्त देकर, यही एक ही सिद्धांत हमें यहाँ प्राप्त होता है, जो सारी सिद्धियों का अंत बताया है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण स्वयं रूप, वो न तो तड़िक आत्मा है, न भगवान का विस्तार है या अवतार है, ये अवतार ही है। सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कंद, भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, सुदृढ़ विश्वास। तो ये हम सब चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में चलने आने वाले के लिए एक ही मात्र उत्तरदायित्व है, ठीक ढंग से चेतन महाप्रभु को परम पुरुष समझना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।